यह प्रवचन 21/4/2013 दिया गया नई दिल्ली श्री श्री राधा पार्षदी मंदिर में परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज द्वारा। हरे कृष्णा। श्लोक अध्याय 9 नमस्कंद अध्याय 11 श्लोक संख्या 23।
प्रार्थना की और इस प्रार्थना के उत्तर में फिलहाल आप कभी उम्मीद कर सकते हो आज के बाद कि राजा अब या नेता अपनी सारी संपत्ति पर ब्राह्मणों को बांटे। वो ब्राह्मणों का क्या स्वभाव था? सब इतने प्रसन्न थे भगवान राम के शासन से कि सब ने स्वीकार किया और फिर सारी संपत्ति वापस लौटा दी। तो ये था समाज का वातावरण। भगवान राम स्वयं जाते थे और देखते थे कि यहाँ कार्य ठीक हो रहा है। अयोध्या की सड़कों को धोया जाता था गुलाब के पानी के साथ और ये गुलाब के पानी ये गिराता था कैसे आता था हाथियों के सूंड के द्वारा। ये नहीं कि आजकल वो वाटर मशीनें होती हैं जिनके द्वारा सड़कों को साफ किया जा रहा है। भारत देखना नहीं देखते हो विदेशों में लगभग हर शहर में आप देखते हो बड़े बड़े ट्रक सड़कों को साफ किया जाता है। पर भगवान राम के राज्य के समय सड़कों को साफ किया जाता है कैसे? हाथियों के सूंड के द्वारा गुलाब के पानी के साथ। ये सिर्फ और भगवान राम खो जाते थे अयोध्या की सड़कों में देखने के लिए कि सफाई कैसे हो गई। तो ये था उनका भाव। तो इसलिए कहा गया श्रीमद भगवत में शुक्रदेव स्वामी के द्वारा कि प्रजा इतनी सुखी थी इसलिए आज भी हम राम राज्य की चर्चा करते हैं कि राम राज्य के समय समाज में किसी प्रकार का कष्ट नहीं, कोई शारीरिक कष्ट नहीं, मानसिक कष्ट नहीं, फिर किसी बुढ़ापापन नहीं। अगर आपको ये छूट दी जाए आज भगवान राम के शासन के समय समाज में नहीं था किसी प्रकार का पछतावा भी नहीं था। हर व्यक्ति दिल को संतुष्ट था, किसी प्रकार का भय नहीं, किसी प्रकार का दुख नहीं और इन कष्टों का कोई नाम निशाना नहीं था। और मृत्यु के समय भी आपको छूट सकते तो भगवान राम के कार्यकलापों का संक्षेप में वर्णन है श्रीमद् भागवतम में। और यहां आज के श्लोक में सुखदेव गोस्वामी क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि अगर आप ध्यान से भगवान राम की लीलाओं के विषय में सुनोगे, अगर ध्यान से भगवान राम के गुणों के विषय में सुनोगे तो आप ईर्ष्या और द्वेष से बच पाओगे और कर्म करने कार्यों के प्रभाव से बच पाओगे। भगवान की जो दिव्य लीलाएं हैं इनका गुणगान अब दिन रात सुन सकते हो थके बिना। ये थोड़ी ही हम केवल कुछ दिनों से ही रामायण की कथा सुनते आ रहे, ये थोड़ी ही आप कुछ दिनों से ही भागवत में महाभारत सुन रहे हो, आप बचपन से सुनते आ रहे हो और अनादी काल से हम सुनते आ रहे हैं। बार बार सुनते हैं, देखते हैं और थकते हैं। भौतिक वाली व्यक्ति ये समझ नहीं पाते कि कैसे संभव है कि भगवान के भक्त एक ही नामों का उच्चारण करते हैं दिन रात और थकते नहीं, एक ही ग्रंथ को सुनते हैं या दो ग्रंथ को थकते नहीं, क्योंकि भगवान ने नामों में अपनी पूरी शक्ति डाली है, उन ग्रंथों में भगवान ने कोई अंतर नहीं। तो इसलिए शास्त्र में कहा गया है हमें इन ग्रंथों में रुचि लेनी चाहिए और ध्यान से सुनना चाहिए। तो ये श्लोक भगवान सुखदेव गोस्वामी हमें उपदेश दे रहे हैं। ईश्वर ईश्वर द्वे से हम कैसे बच सकते हैं। और आज के श्लोक के तात्पर्य में प्रभु जी कह रहे हैं कि इस भौतिक जगत में हम सबके हृदय में क्या है, ईर्ष्या और द्वेष अनेक अनंतर है। खास करके क्षेत्र से काम जब भगवान से अर्जुन ने पूछा क्या कारण है कि जानते हुए भी हम गलत कार्य में जुड़ जाते हैं, अर्जुन ने हमारे क्या का काम है ऐसा क्रोध और फिर क्रोध लोभ लस्ट एंड ग्रीड। भगवान कहते हैं क्या है नरक के हाईवे। तो क्रोध से हमें बचना चाहिए। अगर आप क्रोधित हो क्योंकि भगवान के भक्तों का अपमान हो रहा है, भगवान की सेवा में अड़चन आ रही है, अलग बात है। पर अगर आप क्रोधित हो रहे हो क्योंकि आपको जो सुविधा यादगार चाहिए नहीं मिल रहा, वो गलत है। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने सहनशील बनकर उपदेश दिया श्लोक में। पर जब उन्हें सूचना मिली कि नित्यानंदा पर अपराध हुआ है तो तुरंत वहां पहुंच गए अपने सुदर्शन चक्र से। फिर लोभा लालच, अगर लोभा रखना है तो इस भावना से रखिए कि हमें इस शहर में हर व्यक्ति को भक्त बनाना है, हमें हर व्यक्ति के घर में एक ग्रंथ पहुंचाना है, हमें हर व्यक्ति के उसके गले में एक माला देखनी है। ये होना चाहिए। फिर मोहा और मत्सर्य का अर्थ है ईर्ष्या और द्वेष। तो ईर्ष्या और द्वेष के कारण हम इस भौतिक संसार में भटकते रहते हैं। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ईर्ष्या और द्वेष से हमें बचना चाहिए। और जो भगवान के भक्त हैं वो शत्रु के प्रति भी ईर्ष्या द्वेष नहीं रखते, उनके मन में पूरा विश्वास रहता है कि परम भगवान हमारे सुरक्षित। तो ईश्वर द्वेष से कैसे बचे, हम देखते हैं ईश्वर द्वेष लगभग हर एक में है। कृष्णा भाई मुखाना होगा मन चक्र निकाता था माया करे पत्र करे। हम सबसे पहले अध्यात्म जगत से निकले हैं क्यों, ईर्ष्या और द्वेष। और जब हम देखते हैं किसी में कोई योग्यता है जो हमारे में योग्यता नहीं है तो ईश्वर द्वेष प्रकट होता है। तो ईश्वर द्वेष से हमें बचना है। भगवान ने गीता के चौथे अध्याय में हमें गीता का इतिहास दिया है। और भगवान ने क्या कहा अर्जुन से कि मैं तुम्हें दिव्य ज्ञान दे रहा हूं, क्यों 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 क्यों, क्योंकि तुम्हारे में ईर्ष्या द्वेष नहीं है, इसलिए तुम्हें ज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ पाओगे। तो हमें भक्ति के मार्ग में जब हम जुड़ते हैं हमें खास करके ईर्ष्या और द्वेष से बचना चाहिए। जैसे प्रभुपाद जी तात्पर्य में कह रहे हैं जब हम ईर्ष्या और द्वेष से नहीं बचे में क्या परिणाम होता है कि हमारे हम वैष्णव अपराध में जुड़ जाते हैं। और वैष्णव अपराध का क्या परिणाम होता है, भक्ति का सुंदर बगीचा खराब होता है। आप चैतन्य चतुर्थी का देख पढ़ते हो कि चैतन्य महाप्रभु जी ने जब अपना संकीर्तन आंदोलन आरंभ किया श्रीवास पार्वतिया घर में, वहां सारी रात कीर्तन होता था। तो एक ब्राह्मण था जिनके हृदय में ईर्ष्या द्वेष था, अभाव था श्रीवास के प्रति, उनके मन में अभाव था कि श्रीवास को इतना आदर क्यों मिलता है। और उन्होंने क्या किया, दुर्गा देवी की पूजा का सम्मान रख दिया, कहां कहां श्रीवास के दरवाजे के। और श्रीवास ने जब सुबह दरवाजा खोला और ये श्रीनाथ की बॉटल इत्यादि देखा, श्रीवास ने कहा पड़ोसियों देखो मैं तो पसंद कर रहा था कि मैं हमारे कृष्ण का विश्वास नहीं किया। परिणाम ये हुआ कि ब्राह्मण के हृदय में ईर्ष्या और द्वेष था, उसे क्या कोढ़ की बीमारी हो और वो तड़प सा गया। महाप्रभु जो दयालु है, महाप्रभु प्रकट हुए थे किसके पति तवा ने जो दवा बताया पति तो लोग उद्धार करने के लिए। जब श्रीवर महाप्रभु के पास गए ये मुझे के साथ मुझे माफ करो, महाप्रभु ने कहा तुमने ईर्ष्या द्वेष रखा इस भक्त के प्रति, तुम्हें हजारों साल परिणाम। फिर अंत में महाप्रभु संन्यास लेकर लौटे थे और श्री ब्राह्मण फिर से मिला, महाप्रभु ने कहा शिवर तुम्हार दिया। तो ये एक केवल उदाहरण है, ऐसे अनेक उदाहरण है हमारे शास्त्रों में जिनका ये संदेश है कि हमें ईर्ष्या और द्वेष से बचना है। जब हम देखते हैं कि किसी संत के पास कोई योग्यता है तो हमें ये सोचना चाहिए कि भगवान की कृपा से इस व्यक्ति के पास ये योग्यता है, ये नहीं कभी ये कौन नहीं योग्यता है तो हम सोचें कि उसमें कौन है तो हमें उसे गिराने का प्रयास करना चाहिए या किसी प्रकार से उसकी निंदा करें चापलूस करें। प्रभुजी कहते थे हमें अच्छे सुंदर वैष्णव व्यवहार रखने के लिए एक दूसरे के गुणों को देखना चाहिए और एक दूसरे का गुस्सा बनाने का प्रयास करना। फिर आप वसुंधर धाम का वातावरण अच्छे हो गए और शुक्रदेव गोस्वामी कह रहे हैं अगर आप भगवान नाम की लीलाओं का विषय में सुनोगे या धर्म की लीलाओं का भगवत उपदेश ज्यादा सुनोगे कमजोरी है इसे हम दूर कर पाएंगे। नष्टो उदयशो जिनके हम भगवत से हो या भगवत के नष्ट होते भक्ति भगवती भगवान क्या कह रहे सुंदर कहते हैं अगर आप ध्यान से श्रीमद भगवत सुनते हैं श्रीमद भगवत में है क्या, जैसे कि दस नौवे करने भगवान राम की लीला है शुरू से अंत तक क्या है भगवान की लीला भगवान का उपदेश। अगर हम ध्यान से श्रवणम कीर्तनम करेंगे जैसे हम जानते हो श्रवणम कीर्तनम के द्वारा हम भक्ति में आगे बढ़ते और श्रवण कीर्तन के द्वारा चेत दर्पण मार्जना। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा चेत दर्पण मार्जना, हम लोग सुबह शिक्षा से श्लोकों को उच्चारण करते हैं तो वो कहते हैं भगवान के नामों के उच्चारण का एक लाभ यह है जो हृदय में मैल है, मैल का अर्थ क्या है, मैल आप कैसे अनुभव करते हो इन अनंत के ये दूर हो जाए। तो हमें बड़े गहराई के साथ श्रवणम कीर्तनम में रुचि बढ़ानी चाहिए। यहाँ श्रीदेव गोस्वामी हमें कह रहे हैं ईश्वर पे से आप बच सकते हो अगर आप भगवान राम तो हमें शरणम कीर्तन में रुचि बढ़ानी चाहिए। शरणम कीर्तन में रुचि बढ़ाएंगे तो किस विषय में घटेगी प्रज्वल पाने। गुरु गोविंद स्वामी जी ने हमें अनेक प्रसिद्ध ग्रंथ दिए हैं और श्री उपदेश ने हमें गुरु गोविंद स्वामी जी हमें उपदेश देते हैं किस प्रकार भक्ति नष्ट होती है किस प्रकार भक्ति नाम के तो इस विषय में कहते हैं जब आप देखते हो किसी व्यक्ति में कुछ गुण है तो हमें ये सोचना चाहिए ये गुण भगवान की कृपा से इस व्यक्ति में है और इस गुण का असली मालिक कौन है, स्वयं भगवान है। तो जब हम सोचते हैं मेरे में ये कला है मेरे में ये योग्यता है मेरे में ये गुण है और ये मेरे कारण ये गुण है फिर आप अहंकार के प्रभाव अगर आप ये सोचोगे ये गुण ये योग्यता ये कला जो मेरे में है परम भगवान द्वारा प्राप्त हुई है, इसलिए इस कला के असली स्वामी है भगवान। गीता में क्या कहते हैं भगवान पाठ कर दिया है, भोक्ता नाम यज्ञ तपोसम सर्वलोकम नैश्वर हमें ये स्वीकार करना है कि परम भगवान हर चीज के भोक्ता है, और अगर हमारे में कोई कला है योग्यता है कोई गुण है तो हमें क्या सोचना चाहिए, इस कला ये कला योग्यता है किस लिए, परम भगवान के कारण, इसलिए ये वो है इस कला के स्वामी मैं नहीं, इसलिए इस कला का उपयोग करना चाहिए भगवान की सेवा। तो ईश्वर द्वेष हम सबकी कमजोरी है और हम सब भौतिक संसार में हैं एक ईर्ष्य और द्वेष के कारण, और हमारा सौभाग्य यह है कि शास्त्रों में हमें उपदेश मिल रहा है किस प्रकार आप ईर्ष्य द्वेष से बच सकते हैं। नारद मुनि इस विषय में कहते हैं कि जब आप किसी ऐसे भक्त को मिलो जो कि आपसे ज्यादा एडवांस्ड है, एडवांस नहीं हो तो हमें क्या अनुभव करना चाहिए, आपको खुशी का भाव प्रस्तुत करना चाहिए, क्यों, क्योंकि आपको उस संगत में ऐसा कोई उपदेश मिलेगा जिसके उपयोग से भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ो, और जब आप अपने समानता के व्यक्ति को मिलो तो उससे क्या करना चाहिए, उसके गुस्सा मित्रता का भाव रखते हैं, मित्रता का भाव करते हैं, हम सब एक साथ मिलकर भगवान की सेवा में जुड़ते हैं, और जब उसे आपसे कम योग्यता का कोई व्यक्ति मिले तो क्या भाव प्रकट करना चाहिए, क्या भाव, दया का भाव का अर्थ है हम प्रयास करते उसे दिव्य ज्ञान दे जिसके द्वारा क्या भक्ति में आगे बढ़ सके, इसी कारण जो भक्त हैं हमें ये प्रचार का भाव रहता है, क्यों, क्योंकि वो चाहते हैं कि हर व्यक्ति सुखी बने भगवान की शिक्षा को अपना। तो सुखदेव गोस्वामी श्लोक में बड़ा महत्वपूर्ण संदेश दे रहे हैं, क्योंकि ईर्ष्या द्वेष के कारण युद्ध होते हैं, जो बड़े बड़े युद्ध होते हैं एक देश और दूसरे देश ईर्ष्या द्वेष के कारण, जैसे हिंदी में कहते हैं क्रिमिनल राइट्स होते हैं, ईर्ष्या द्वेष के कारण मंत्रों में भी वातावरण बिगड़ जाता है, इसलिए अगर आप ध्यान से तात्पर्य पढ़ो तो आप देखोगे कि बार बार द्रौपदी इस विषय पर बल दे रहे हैं ईर्ष्या द्वेष से हमें बचना है, और अगर आप पोलियो सर्च करो तो आप देखोगे कि हर तीसरे चौथे तात्पर्य में द्रौपदी ईर्ष्या द्वेष के विषय में चर्चा करते हैं, क्योंकि इसके कारण हम और इस नाम में बढ़ते रहते हैं, और इसलिए द्रौपदी कह रहे हैं devotee mandeo be completely free from many especially of other devotees, तो खास करके हमें भक्तों के प्रति ईर्ष्या द्वेष नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम देखें किसी भक्त को योग्यता है कोई गुण नहीं चाहिए तो उस ईर्ष्या द्वेष से हमें बचना चाहिए, जैसे प्रभुजी तात्पर्य ने कहा है भक्त जो है किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष नहीं रखता शत्रु के प्रति भी है, आप चैतन्य चैतन्य गीता में भी पढ़ते हो कहता एक भक्त अमोघा थे सर्व मोह भट्टाचार्य थे नमार सर्वमोह भट्टाचार्य थे बृहस्पति के और मायावादी भाव था समान रूप की कृपा से ऊंचे कोटि के भक्त बने, और फिर जब उन्होंने आप प्रभु के द्वारा आत्मा श्लोक की व्याख्या सुनी किस प्रकार चौथे अलग तरीकों से उन्होंने एक ही श्लोक की व्याख्या की, दिलीशर के साथ बाबा जी को ऐसे तो उनके सुमार ने आदेश दिया था, ले जाओ चैतन्य महाप्रभु जी के संदेश को पश्चिम देशों में, और पश्चिम देशों में कृष्ण भक्ति की स्थापना करने के पश्चात प्रभु भारत में लौटे अपने विदेशी शिष्यों के साथ 1967 में। 1967 में प्रभु जी दिल्ली में आए थे और प्रभु जी यही देख रहे थे किस प्रकार से कृष्ण भक्ति की स्थापना हो सकती है। प्रभु जी जब वृंदावन में थे राधा नाम में निवास कर रहे थे, केवल देवी आपके किस लिए अपने ग्रंथों को प्रकाशित करने के लिए, प्रकाशित के अलावा प्रभु जी भी नहीं आते थे चंदा इकट्ठा करने के लिए, इन ग्रंथों को प्रकाशित करने के लिए, और फिर खेले जाकर इन ग्रंथों का वितरण भी करते थे। तो प्रभु जी का बड़ा प्राचीन संबंध था आपके शहर के साथ। और जब प्रभु जी 1967 में भारत में आए तो अपने विदेशी शिष्यों के साथ, क्योंकि प्रभु जी ने पहले कृष्ण भक्ति की स्थापना की अमेरिका में विदेशों में, तो प्रभु जी के मन में ये भार भी था कि भारतवासियों को भी ये शिक्षा देनी चाहिए। पश्चिम देशों में जाने से पहले प्रभु जी ने भारत में बहुत प्रयास किया था लोगों को कृष्ण भक्ति में जोड़ने के लिए, कोई इस तरह उन्होंने प्राप्त नहीं। जब प्रभु जी लौटे 67 में तो वो दिल्ली भी आए थे, तो उस समय वो दिल्ली में गए जहाँ की प्रभु जी पहले रहते थे शिपिवाड़ा में। देखो भगवान की इच्छा हो तो स्थान प्राप्त कर जाएगा, तो शिपिवाड़ा प्रभु जी सीधा एयरपोर्ट से शिपिवाड़ा गए। प्रभु जी की इच्छा थी कि वहाँ दफ्तर बनाया जाए, और फिर दो साल बाद 69 में प्रभु जी बॉम्बे से अमृतसर जा रहे थे गाड़ी में, और वो गाड़ी 10 मिनट के दिल्ली में रुकी। तो दिल्ली में उस समय एक मेयर थे जिनका नाम था हंसराज गुप्ता, वो नाम एक भावे थे, तो वो पढ़ रहे थे अखबारों में कि प्रभु जी ने भारत में प्रचार शुरू किया है, बॉम्बे में पंडल हुआ था, दिल्ली में भी एक बड़ा पंडल हुआ था, तो ये हंसराज गुप्ता प्रभु जी को मिलने गए। गाड़ी 10 मिनट के रुकी थी और जाते थे, तो उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि आप आओ दिल्ली में प्रचार करने के लिए। प्रभु जी ने कहा मैं अभी आप अमृतसर जा रहा हूँ, उन्होंने दूसरे भक्तों को गाड़ी दी, गुरुदास वगैरह यमुना माता जी, यमुना माता जी आने की प्रचार बढ़ते गया। दो दिन पहले यहाँ सुराब आए थे, सुराब बड़ा जी की पुराने शिष्य हैं, जो आर्किटेक्ट थे, प्रभु जी ने उन्हें शिक्षा दी थी कि इस प्रकार मंदिरों को डिजाइन करना चाहिए। उन्होंने बॉम्बे मंदिर और वृंदावन मंदिर समाधि का भी डिजाइन बनाया, तो मैंने उनको कहा कि द्वारा द्वारा बनाए। तो मुझे सुराब कह रहे थे कि प्रभु जी ने कहा उन्हें दिल्ली बिग सिटी कई गाँव में करते हुए यहाँ में हर गाँव में एक मंदिर होना चाहिए। तो शादी जी की कृपा से, क्योंकि जब प्रभु जी दिल्ली में भी थे तो बड़ा प्रयास कर रहे थे कि कोई स्थान हमें प्राप्त हो या कि मंदिर हो सके। आप जैसे जानते हो पहले पहले इस मंदिर का खुला था आनंद केंद्र में, उससे पहले था एक भक्त श्री विष्णु जिन्होंने मॉडर्न टाउनी के दफ्तर खोला था। पहले मंदिर था आनंद केंद्र में, फिर उसके बाद मंदिर गया था बंगाली मार्केट में, बंगाली मार्केट वो होती अभी भी है। उन्हें जितना और वो छोटा सा मंदिर था, मेरे जो मंदिर का कमरा था और मैंने दादा प्रसाद को भी ऑर्डर के बोला उसके अलावा तीन और कमरे थे बोला। और मुझे याद है एम्बुलेंस में हम आया को घंटे हमारे मकान में बंगाली मार्केट हमें खाली करना पड़ा। फिर हम कहा गए बिल्डिंग हाँ वो थी हम स्टाफ वाली बिल्डिंग में प्रॉपर रहते थे वहाँ से। उसके बाद आए फिर नहीं में उस नाम में उस बिल्डिंग में अभी भी है उस बिल्डिंग में हम बाबा और लेन बना हुए वो बाबा जी की कोठी थी। हम चार हजार महीना किराया दे रहे थे उन्होंने ऊपर नीचे तो मंजिल ब्रह्मा ने भी काफी समय तो फिर खाली रोड में थे तो फिर मालिक पुखा से कई साल बात कर रहा कि ये भी खाली करो। तो फिर हम खोज रहे थे और फिर जीबीसी के द्वारा हमें एक ग्रांट मिल गया था दिल्ली मंडल के दिल्ली के 7 लाख रुपये का ग्रांट। तो फिर हम बिल्डिंग ढूंढ रहे थे और फिर हमें ये गेटर ग्लास M119 तो वहाँ के वो बिल्डिंग की एक स्कूल टीचर थी शायद उसका नाम शर्मा था। तो एक स्कूल टीचर था जिसने वो बिल्डिंग बनाई थी। तो हम उसके घर गए थे पुरानी दिल्ली में उनको कहा कि हम अंदर बनाना चाहते हैं। तो उन्होंने फिर वो बिल्डिंग हमें भेजी 7 लाख
कितना
7 लाख 7 लाख 25 हजार था। हम लोग काफी गहराई से खोज रहे थे स्थान के लिए। बाबा जी जब बंगाली मार्केट में थे उनकी भी बड़ी इच्छा थी कि कोई स्थान मिले मंदिर बनाने के लिए। एक बार हम गए थे पटेल नगर में जगह देखने के लिए वो डिफेंस डिपार्टमेंट की जगह बजट हम प्राप्त हुए। तो बड़ी कठिनाई से ये स्थान का हमने DDA में अप्लाई किया था जमीन के लिए। तो कई साल गए उस समय दिल्ली के वाइस चेयरमैन ने DDA के जगमोहन वो बाद में पर बन गए थे जम्मू कश्मीर के बड़े अच्छे धार्मिक आदमी थे ईमानदार थे। हम उनके पास गए इस टीम के साथ हम दो ही कॉलेज नाम करते हैं। तो फिर उन्होंने हमारे टीम को फिर जमीन प्राप्त करने में मेरे ख्याल से कम 6-7 साल लगे थे 6-7 साल भगत बड़ी करनी पड़ी क्योंकि ये जो इलाका था ये ग्रीन बेल्ट था। ग्रीन बेल्ट समझते हो यहाँ बिल्डिंग बनाने के लिए और जो मिनिस्टर थी वो थी तो वो भी नहीं चाहती थी हमें ये स्थान प्राप्त हो शायद हमारी वजह से स्थान प्राप्त हुआ। और फिर यहाँ ये मंदिर का नाम असर पड़ने के लिए मानदार में आती श्री माता को समय प्रचार कर रहे थे। इस टाइम गोपाल जी थे जो सरकारी नौकर थे वो देर देखा जा रहे थे प्रचार करने के लिए। और मेरे व्यास प्रभु जो है सब भक्तों के प्रयास से आज से 15 साल पहले इस मंदिर का उद्घाटन हुआ। प्रधानमंत्री वाजपेयी जी आए थे जिन्हें महामंत्र आए थे और साथ में जितेंद्र खन्ना जो उस समय दिल्ली का गवर्नर था वो भी आया था। और मेरे ख्याल से सुषमा स्वराज उस समय पूरे दिल्ली में एक मंदिर था, यादव मंदिर था। फिर आस्ते आस्ते प्रचार बढ़ते गया, फिर दूसरा मंदिर खुला पंजाबी बात में। शिवराम प्रभु मुझे कहते थे, शिवराम और ज्ञानवा दो विदेशी भक्त थे जिन्होंने पहले पंजाबी बात का केंद्र खोला था। यहाँ मंदिर आज है वो नहीं, मेरे एक दूसरे स्थान में मंदिर था। किसी व्यक्ति ने अमेरिका में हमें वो स्थान दान में दिया था। तो वो छोटी राधिका रामानी की स्थापना हुई गैरेज, उस समय मंदिर था गैरेज में। और फिर कई साल बाद उस व्यक्ति की नियत बदल गई, कहने लगा कि घर खाली करो, हमने बहुत पहले हमने दिया था खाली की तरह। केस के बाद केस हम मारा गए, फिर केस हार गए तो दुख था। पर भगवान की लीला को समझना कई बार कठिन होता। तो खैर केस हार गए तो क्या विवाद सभी नहीं होने वाला था। प्रेजेंट ना प्रॉब्लम हो, प्रेजेंट में ना कितने सालों के लिए चार पांच साल के लिए मोहन का प्रोपोगेशन प्रेजेंट, मोहन का प्रोपोगेशन प्रेजेंट। खैर वो स्थान हमें खाली करना पड़ा, हमें नोटिस मिल गया था। तो फिर भक्त ने कहा कि एक और स्थान ढूंढना पड़ेगा। तो भगवान की कृपा से जिस स्थान में आज मंदिर है वो स्थान हमें प्राप्त हुआ। भगवान की कृपा से तीन करोड़ आज उसकी कीमत पैंतीस करोड़ होती है। तो मेरा बहुत मदद की, जिनके सहयोग से
हम एक दूसरे को सब प्रभु नाम से पुकारते। जो प्रभुपाद की पत्नी ने पढ़ी तो प्रभुपाद की पत्नी ने पढ़ना भी जो है उसी प्रकार